శిల ప్రభుపాదకి హరే కృష్ణ. అధ్యాయ దూసరా హమారా చల్ రహా హై ఇస్ సమయ భగవత్ గీతా కా అధ్యాయ ఉస్కా నామ క్యా హై గీతా కా సార్ ఔర్ హాం సంబంధ క్యా గీతా సార్ యా దూసరా దూసరా ఔర్ ఏక్ నామ బతాయా గయా థా ఆచార్యో కే ద్వారా దియా గయా హై దూసరా నామ सांख्य योग. तो गीता का सार दूसरे अध्याय को कहा गया है. तो गीता का सार क्या है? सरेंडर तो तत्व है. सार क्या है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल. मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं. सांख्य योग का अर्थ क्या है? सांख्य का अर्थ क्या है? अरे अध्याय का नाम ही भूल गए. भगवान के साथ इतना आनंद में रहे आप सब कार्तिक में कि सब अध्याय का नाम भी भूल गए. एक्सटसी, इसको क्या कहते हैं? एक्सटसी. ये भूलना भी दिव्य भूलना है. है ना? सांख्य का अर्थ क्या है? हमने कहा था प्रत्येक अध्याय का अर्थ समझ के उनको याद करना चाहिए. पर सांख्य योग जो अध्याय चल रहा है, अध्याय क्रमांक 2, आप ही ने कहा इसका दूसरा नाम सांख्य योग है. तो सांख्य योग का अर्थ क्या है? हाँ जी, अच्छा, भगवान के साथ हमारे संबंध समझना. तो पूरा भगवत गीता में उसका ज्ञान है. उसको क्या कहते हैं? संबंध ज्ञान. संबंध ज्ञान मतलब भगवत गीता. है कि नहीं? संबंध हमारे इस जीव का इस आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, और यह आत्मा इस संसार में क्यों आ गया है? ऐसे ही घूमते फिरते टाइम पास करने के लिए आया है? किस लिए आया है? यह जानना मतलब संबंध ज्ञान. जब भी शास्त्र में ज्ञान इस बात की चर्चा होती है तो उसको क्या समझना चाहिए? केवल और केवल संबंध ज्ञान. प्रत्येक वस्तु को भगवान के साथ संबंध में देखना चाहिए. तो सांख्य योग का अर्थ क्या है? संबंध ज्ञान. थोड़ा बहुत ठीक है, और थोड़ा विस्तार से बताइए. हाँ, प्रकृति का, जीव का, ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का आपस में क्या संबंध है, इसको यदि समझना है तो उस पूरे शास्त्र का जो विवरण है, जो एनालिसिस है, प्रकृति का, जीव का और भगवान का आपस में क्या संबंध है, इसको जो समझा जाता है, जो समझते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा समझा जा सकता है, उसको कहते हैं सांख्य शास्त्र, सांख्य फिलोसफी. एनालिसिस, विश्लेषण. किसका विश्लेषण? शरीर, प्रकृति, जीव, विशेषकर शरीर और आत्मा. आप सोचिए, शरीर और आत्मा ये दो भिन्न विषय इतने महत्व के हैं कि इस अध्याय का नाम ही दे दिया गीता सार. मतलब पूरे गीता का सार क्या है? हाँ, भगवत गीता का सार क्या है? पूरे भगवत गीता का सार, इसका अर्थ क्या होता है? इस अध्याय का नाम है गीता का सार, गीता सार. तो ये पूरे गीता का सार क्या है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं है. क्योंकि इस अध्याय में अभी तक हमने क्या देखा? आत्मा का विश्लेषण देखा. अभी आगे आगे और विश्लेषण होगे. तो इस अध्याय का पहले अध्याय के साथ क्या संबंध था? तो पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत सारे संशय व्यक्त किए, है कि नहीं? बहुत सारे संशय आए अर्जुन को, बहुत सारे संशय व्यक्त किए. और दूसरे अध्याय में उसको और कंटिन्यू किया, क्योंकि बहुत सारे संशय थे, इसलिए दूसरे अध्याय के शुरुआत में हमने देखा वो तो भ्रमित हो गया। जब व्यक्ति को बहुत सारे डाउट और डाउट और डाउट ही होते रहते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बी अलर्ट, भ्रमित होने के चांस ज्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति के विषय के प्रति यदि डाउट है, संशय, विशेषकर शास्त्र के प्रति, केवल हमारे पास संशय ही है, तो यह समझना चाहिए कि अब हम कंफ्यूज होने वाले हैं। यह कंफ्यूजन का आसान तरीका है। यदि हमारे पास संशय है तो संशयों के कारण हम तुरंत बहुत ही जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो अर्जुन इस प्रकार से देखते हैं हम क्या हो गए, थोड़े भ्रमित हो गए, भ्रम के कारण युद्ध नहीं करेंगे बोल दिए। भगवान कृष्ण के साथ उनके संबंध कैसे थे? मित्रता के संबंध। परंतु इस अध्याय के शुरुआत में सातवें श्लोक में हमने देखा मित्रता का जो संबंध है वो किस में बदल गया? गुरु और शिष्य के इसमें बदल गया, है कि नहीं? तो भगवान गुरु बन गए और अर्जुन ने इस अध्याय में स्वीकार किया, मतलब क्या किया? समर्पित हो गया। तो इस अध्याय में हमने देखा पहला विभाग क्या है, पहले श्लोक से लेके तो दसवें श्लोक तक ना, पहले श्लोक से तो दसवें श्लोक तक पहला सेक्शन है, उसमें क्या है? अर्जुन का कंफ्यूजन, पहले संशय फिर कंफ्यूजन, और यदि व्यक्ति वास्तव में इंटेलिजेंट है तो समर्पण। देखिए पहले क्या होता है, संशय बढ़ता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते बढ़ते इस स्तर पे आ जाते हैं कि भ्रमित होना शुरू हो जाता है, मतलब कंफ्यूजिंग ही रहते हैं हमेशा। कोई व्यक्ति के चेहरे पे देखे तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति 24 आवर्स कंफ्यूज ही लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर संशय बहुत है, अनेक प्रकार के संशय है। तो संशय से भ्रम, और भ्रम से यदि भ्रमित ही रहता है व्यक्ति तो वो व्यक्ति विध्वंसक हो सकता है, अपने आप के लिए नहीं तो दूसरों के लिए। वो व्यक्ति विध्वंसक हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अर्जुन के जैसा बुद्धिमान है, वो समझ गया कि वो कंफ्यूज है, पहले डाउट आया अब कंफ्यूज हो गया, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धिमान है इसलिए समर्पित हो गया। तो जब भी हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है क्या होना चाहिए? हाँ, किसको? भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से इस दसवें श्लोक तक हमने देखा कि अर्जुन शरणागत हो गए। तो श्लोक कौन सा है? कार्पण्य दोषो, बोलिए सब बोलिए, दोषो शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मतलब शरण आ गए, मतलब यहां पे शरणागति की शुरुआत हो गई। भगवद गीता की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि अर्जुन क्या हो गए? शरणागत। मान लो अर्जुन शरणागत नहीं होते तो, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए, अर्जुन शरण ही नहीं जाते, ऐसा बोलते ही नहीं कि हे भगवान कार्पण्य दोषो, मैं कृपण हो गया हूं, बड़ा थक गया हूं, सोचते सोचते बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब अंधकार दिख रहा है, थक गया हूं, अब आप ही सब कुछ हो, ऐसा यदि अर्जुन नहीं बोलते तो क्या भगवान कुछ बोलते? यदि भगवान से आपको कुछ सुनना है, भगवान के उपदेशों को ग्रहण करना है, तो पहले यह बोलना पड़ेगा कि हे भगवान कार्पण्य दोषो प्रहुत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं समझना है कि सब कुछ समझ में आ गया है भगवान, मैं सब जान गया हूं। यह शरणागति नहीं है। तो शरणागति से जब शरण होके जब हम इस प्रकार से बोलते हैं तो भगवान भी फिर क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम रज। क्योंकि आप शरण आ गए हो तो अब क्या करेंगे भगवान, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि माश्च। तो शरणागत, शरणागति शुरुआत को हो गई शुरू, मतलब दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन शरण हो गए तो भगवान ने उस बात को कंफर्म कर दिया 18वें अध्याय में कि ठीक है आप शरण जो मुझे आ जाता है उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके सारे पाप मोक्षयामि माश्च। तो इस प्रकार से 10वें श्लोक तक अर्जुन की शरणागति है। परंतु यहां तक भी हमने देखा कि अर्जुन अभी तक भी भ्रमित थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छे से है, परंतु एक ही विशेष बात है कि शरणागति। इसलिए आगे दूसरे सेक्शन में, क्योंकि शरणागत व्यक्ति को भगवान पूरा ज्ञान देते हैं, इसलिए दूसरे सेक्शन में, दूसरे विभाग में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान देना शुरू कर दिया है कि नहीं। ज्ञान दिए भगवान 11 से 30, इसमें क्या है, आत्मज्ञान। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, जब भी ज्ञान रहेगा समझना चाहिए कि यह ज्ञान मतलब आत्मा और परमात्मा के रिलेशनशिप के बारे में जो संबंध है, मतलब आत्मा और परमात्मा के जो संबंध है उसके विषय में जो कुछ भी है उसी को ज्ञान कहते हैं। तो इस 11 से 30 तक ज्ञान भगवान ने कहा है, और उस ज्ञान में कहा क्या है, आत्मा को मृत्यु नहीं है। तो हम 11 से 30 को एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि पूरा ही अध्याय रिफ्रेश करेंगे तो वो आपके लिए होमवर्क कुछ बचेगा ही नहीं फिर। इसलिए हम पूरा अध्याय को नहीं रिफ्रेश करते, हम 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक फ्लैशबैक। तो 11वां श्लोक है, अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गता सुनगतांश नानु सोचति पंडितः। अरे पंडित ऐसे नहीं सोचते, पंडित लोग ऐसे कहीं सोचते हैं क्या, ऐसे नहीं सोचते। इस श्लोक में भगवान ने डायरेक्ट उपदेश देना शुरू कर दिया। हाँ, इस श्लोक में भगवान का पहला ही उपदेश है। पहला उपदेश क्या है, आत्मा को मृत्यु नहीं और शरीर अमर नहीं, आत्मा को मृत्यु नहीं शरीर अमर नहीं। अशोचान तो फिर शोक क्यों करते हो, फिर किसी भी बात पे शोक क्यों करना है, क्या कारण है शोक का, नहीं करना चाहिए शोक। अब अर्जुन के पहले जो भी कुछ अर्जुन ने पहले प्रश्न पूछे हैं उसका सीधा सीधा उत्तर भगवान इसमें सीधा बता रहे हैं कि आत्मा, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उत्तर सारे प्रश्नों का पहले अध्याय के, कि आत्मा मरता नहीं और शरीर अमर नहीं, दोनों नहीं नहीं, आत्मा मरता नहीं और शरीर अमर नहीं, दोनों नहीं नहीं और दोनों है। आत्मा अमर है और शरीर मरता है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों बहुत मुख्य बात है, एक ही बात है, दो अलग अलग शब्दों में बताई जाती है। तो अर्जुन ने जो इतने सारे तर्क किए पहले अध्याय में, करुणा सुख, कितनी बातें कही है, बहुत सारी बातें कही है, धर्म का, वंश परंपरा का नाश, अनेकों बातें, उन सब को भगवान ने एक वाक्य में सब कुछ बता दिए है। और विशेषकर इस श्लोक में भगवान ने सारे गीता का उपदेश बता दिया है। वो उपदेश क्या है, देह और देही दोनों में भेद होता है, मतलब शरीर और आत्मा अलग अलग है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, मनुष्य शरीर में ही विवेक होता है, दूसरे शरीर में विवेक नहीं होता है। यदि मनुष्य शरीर में विवेक नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? पशु बुद्धि। यदि मनुष्य में ये विवेक नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात को यदि मनुष्य नहीं समझता है तो वो पशु बुद्धि है, वो पशु बुद्धि है। पशु भी नहीं समझते हैं ना, कुत्ता समझता है क्या वो शरीर नहीं आत्मा है? बस सुबह निकलता है, जो घूमते रहता है खाने के चक्कर में, जहां खाना मिला खा लेता है, जहां गटर दिखा वहां सो जाता है, वो कुछ भी नहीं सोचता है। क्या सोचने का है? क्या सोचने का है? बस मजा करो, ऐश करो। कोई मनुष्य यदि इस प्रकार से बोलता है तो तुरंत समझना चाहिए कौन है। हाँ अभी क्या बोला मैं उदाहरण? हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ऐसे प्रकार से, इस प्रकार से कोई कुत्ता यदि भौंकने लगता है तो आप उसके पास खड़े रहेंगे? भाग जाएंगे ना। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति कुछ बोलने लगता है ज्ञान की बात, तो क्या करना चाहिए? हाँ नहीं तो काटेगा। और जब वो काटता है तो अपना भी विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए कुत्तों से सावधान, ये लिखा रहता है। तो ये हमने हमेशा नित्य ध्यान रखना चाहिए कि सावधान, पशुओं से सावधान, कभी भी काट सकते हैं, उनका पॉइजन उतरता नहीं इस जन्म में। बड़ी हेवी क्या वैक्सीन लेनी होती है मंदिर में जाके। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे कि शोक मत करो, अशोचान ननु शोचस्तम। अभी आप बताइए इसका अर्थ क्या है? शोक नहीं करना चाहिए, पहली बात तो शोक नहीं करना चाहिए। किस बात का शोक नहीं करना चाहिए? नहीं, उसका तो अर्जुन शोक भी नहीं कर रहा है। हाँ, जो मरने वाले हैं, जो मर चुके होंगे वो तो जाने दो, जो मरने वाले हैं विशेषकर, है कि नहीं, उनका क्यों शोक कर रहे हो? इस श्लोक में हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी, आप थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिए। तो शोक तो यह है, विशेष शोक तो किस बात पे करना चाहिए? शोक करने लायक कौन सी बात है? जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, ये बहुत बड़ी शोक की बात है। इससे निकलना है, लेकिन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि आगे का जठर कौन सा मिलेगा क्या पता, कौन सा प्राणी होगा, क्या होगा, है ना? तो बार बार, और उसमें भी एक विशेष बात है, भगवान यहां इसलिए बोल रहे कि बार बार क्यों शोक कर रहे हो? ठीक है एक बार हो गया, ठीक है एक बार बुरा लगा, आपके तातश्री वगैरह सामने युद्ध करने के लिए तैयार है आपके साथ, थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, बस हो गया, चलो चलाओ बाण। तो बार बार शोक कर, बार बार तो कभी शोक करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान समझाते हैं, जो मृत है उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गए हैं वे तो अमर है। लेकिन जो गए हैं वो अमर कैसे हैं? जो मृत है, मान लो जो मरने वाले हैं या जो मर गए, कोई भी जो मर गए उनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए, और जो मरने वाले हैं उनके भी प्रति शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं है, और यदि मरता तो वो जाते ही नहीं है। आत्मा मर जाता तो कहां जाते, जाते ही नहीं। आत्मा भले ही मरने दो वो जाते ही नहीं, यही रहते, परंतु आत्मा मरता नहीं है, इसलिए आत्मा नित्य अमर है। वास्तव में इसलिए कोई मरता ही नहीं है, है? कोई मरता है क्या? कोई नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा अमर है, बस शरीर इधर से उधर बदलते रहते हैं। वो तो बचपन से बदलने की आदत हमको है, इस बात की चर्चा हुई थी हमारे बाल्यावस्था से अभी तक हमको कितनी बार हमने शरीर बदला है कि नहीं? कई बार शरीर बदला है, और मृत्यु के पश्चात भी वो शरीर बदल जाएगा, तो कौन सी नई बात हो रही है उसमें? तो इसलिए भगवान कहते इस बात पे शोक मत करो। जीवित अवस्था में व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीता है। जीवित अवस्था में व्यक्ति क्या करता है? कर्म करता है। कैसे कर्म करता है? भक्त और अभक्त के बारे में चर्चा हुई थी, किस प्रकार से कर्म होते हैं। तो उस प्रकार से भक्तिमय जीवन को अपनाना चाहिए और मृत्यु के भय से दूर होना चाहिए, निर्भय बनो। तो इस प्रकार से शोक कब करना चाहिए? तो व्यक्ति को ऐसे मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए जो भगवान के प्रति जानना नहीं चाहते, जो अपने आत्मा के प्रति आत्मज्ञान नहीं लेना चाहते, आत्मज्ञान रहित होना चाहते हैं। वास्तव में ऐसे मूर्खों के प्रति भी शोक करना चाहिए, थोड़ा सा दुख व्यक्त करना चाहिए रोज सुबह उठ के। ऐसे मूर्ख है, ऐसे संसार में इतने मूर्ख है जो आत्मज्ञान रहित है, अरे 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 कितनी बुरी बात है। उनके प्रति भी रोज शोक व्यक्त करना चाहिए, है कि नहीं? और इस श्लोक में फिर कहा है पंडित। पंडित कौन है? विद्वान, लर्नेड कौन है? जिनको आत्मा और शरीर के संबंध का ज्ञान है कि आत्मा का शरीर के साथ संबंध क्या है, शरीर का आत्मा के साथ क्या संबंध है, वास्तव में वही पंडित है। दूसरे कौन है? हाँ, जोर से बोलिए ना। मूर्ख है क्या कि नहीं है? नहीं है बोल रहे तो फिर पंडित बोलने का तात्पर्य क्या है? भगवान यहाँ पंडित बोल रहे, विशेषकर जो पंडित होते हैं वो शरीर और आत्मा के संबंध को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वास्तव में वही लर्नेड है, वही साइंटिस्ट है, साइंस को जानते हैं। तो ज्ञान क्या है? वास्तव में फिर जीव, प्रकृति और ईश्वर को जानना ही ज्ञान है। अब यहाँ पे अर्जुन को भगवान, हमने बताया था कि अर्जुन का इतनी देर से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे, भगवान सुन रहे सुन रहे सुन रहे, अब फटाक से बोले क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? पंडित हो और मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसको शोक करने का, उसके ऊपर शोक कर रहे हो, तो ऐसा भगवान क्यों कह रहे उनको, अर्जुन को इस प्रकार से क्यों कह रहे? क्योंकि अर्जुन तो बहुत अच्छे तर्क कर रहा है, बढ़िया प्रश्न पूछे अर्जुन ने, इतने अच्छे प्रश्न पूछे हैं, तो क्या अर्जुन को बुद्धि नहीं है? हाँ, संसार में लोग कितने अच्छे प्रश्न पूछते हैं, नहीं पूछते है? बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं? तो भगवान ऐसे क्यों चिल्ला रहे उनके ऊपर, इतने अच्छे प्रश्न पूछे फिर भी, इतनी बुद्धि है फिर भी? हाँ, सोचिए, बुद्धि है अर्जुन को, बुद्धि है कि नहीं है? है। हमको भी बुद्धि है ना, हम कोई मूर्ख थोड़ी है, सत्संग में आते हैं सब बुद्धिमान है, जो सत्संग में जाता है वो बुद्धिमान है। तो बुद्धि तो है, फिर मूर्ख क्यों कहा है भगवान? मूर्ख मतलब नहीं, भ्रमित तो ठीक है, मनुष्य है भ्रमित होते ही रहता है। देहात में बुद्धि है, थोड़ा बहुत पास में है। हाँ बताइए, बहुत बहुत इसके ऊपर चर्चा हुई थी हमारी। बुद्धि हो के भी उपयोग नहीं है क्यों? बुद्धि है भी उपयोग नहीं है क्यों? हाँ, आत्मज्ञान के ऊपर आधारित, आत्मज्ञान के बिना बुद्धि है, बुद्धि है पर आत्मज्ञान नहीं, मतलब आत्मज्ञान के बिना जो बुद्धि होती है उसका कुछ उपयोग है? भगवान कह रहे कि ऐसे कैसे हो तुम, मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। मतलब आत्मज्ञान के बिना यदि इंटेलिजेंस बुद्धि है भी, तो भी हम मूर्ख हैं। इसलिए हमको क्या समझना होगा, इसलिए हमको समझना होगा शरीर मन और मिस्टर माइंड मिस्टर बॉडी एंड मिस्टर इंटेलिजेंस, है कि नहीं, माइंड बॉडी एंड इंटेलिजेंस, और इनको समझने के बाद मिस्टर सोल। ये चार लोग अंदर रहते हैं, एक लोग नहीं रहता है, चार लोग अंदर रहते हैं। चारों कैसे रहते हैं, झगड़ते हैं क्या, एक दूसरे को पीटते हैं क्या, कि अंदर प्रेम से रहते हैं? हाँ, इनको शक्ति कहां से मिलती है, इनका गॉडफादर कौन है? हाँ, तो इसलिए बुद्धि जो आत्मज्ञान रहित होती है उसका कोई उपयोग नहीं, यूजलेस। क्या है यूजलेस, इसकी चर्चा हुई है, आपको लग रहा है नए लेक्चर चल रहा है, ये सब हो चुका है। इसमें नया कुछ भी नहीं बताया है, मैंने दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक बताया है। अभी दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक अतिशय संक्षिप्त में बताएंगे। नत्वेवाहं जातुनाशं नत्वं नेमे जनाधिपान चैवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहे, और ना ऐसा भी है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे, पहले भी थे अभी भी है, नित्य रहेंगे। भगवान कहते हैं जीवात्मा, इसका अर्थ है भगवान कहते हैं जीवात्मा भगवान का अंश है, तो मैं भी हूं आप भी है, दोनों और दोनों नित्य रहेंगे। तो इस प्रकार से कोई दुख का कारण कुछ भी कोई भी बात हो इस संसार में दुख का कारण नहीं हो सकती, नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन। मैं भी था आप भी थे, मैं भी हूं आप भी है, मैं भी रहूंगा आप भी रहेंगे, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो जब ऐसा है तो फिर दुख क्यों? इस श्लोक में भगवान ने उस बात की विस्तार से चर्चा की है। यह श्लोक भगवद गीता का अतिशय महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक से हमने बताया था कि हमारी ट्रेन शुरू हो रही है, हमको जाना है मथुरा, और मथुरा को जाने के लिए हम राइट सही ट्रेन में बैठना है। सही ट्रेन में हम इस श्लोक से बैठ गए हैं। यदि हम इस श्लोक को अच्छे से समझे तो, और यदि हमने गड़बड़ कर दी, यदि हम इसको अच्छे से नहीं समझे तो पहले ही स्टेशन पे हमने गलत ट्रेन पकड़ ली, जाना है मथुरा और पहुंच गए हैदराबाद चार मीनार कुतुब मीनार। इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझना है, क्यों? क्योंकि इस श्लोक में भगवान कहते हैं तुम भी रहोगे मैं भी रहूंगा, इसका अर्थ यह है कि तुम मेरे में डिसॉल्व नहीं हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम मुझ में डिसॉल्व, समझते ना क्या कहते हैं उसको, डिसॉल्व हो जाना, विलीन मतलब मिक्स हो जाना। हाँ, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि यहां कहा है नत्वे वाहम, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तुम अलग थे और मैं अलग, मतलब तुम और मैं नहीं थे, तुम भी थे और मैं भी, मतलब दो सेपरेटली हम दोनों थे। भगवान क्लियरली बता रहे हैं, मतलब इसका क्लियर अर्थ क्या है कि हम भगवान के अंश है और भगवान विभू है, हम अणु है, अणु का विभू कभी बनता ही नहीं, मतलब भगवान को कहीं पे भी मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। कोई आदमी फटाक से उड़ जाता है, मैंने बताया था उदाहरण, 30 35 साल 40 साल 50 साल का उम्र हो जाता है और अचानक उसको लगता है मैं भगवान हूं, बस अभी तक इसके पहले क्या था, तो बोले ड्राइवर बस का और अब क्या हो गया, भगवान हो गया। तो भगवान इस प्रकार से मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते, बनते नहीं, कोई कंपनी में नहीं बनाए जाते, भगवान जन्मतः भगवान है और हम उनके जैसा बन सकते हैं क्या? हाँ, किसी को पता ही नहीं है कि हाँ कि नहीं
नहीं,
नहीं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में चर्चा हुई थी कि यह बात ध्यान से समझ ले कि भगवान, हम भगवान के अंश है और हम भगवान में मिक्स होते नहीं हैं। हमारा भी अस्तित्व है, भगवान का भी अस्तित्व है, दोनों के बीच में बहुत सुंदर प्रेम पूर्ण संबंध है, उस संबंध को हमको समझना है। तो इस श्लोक में हमने सही ट्रैक पकड़ा है कि नहीं? क्योंकि हम इस श्लोक को अच्छे से समझे इसलिए हम राइट ट्रैक पे आ गए। यदि इसके व्यतिरिक्त तो कोई भी कुछ भी व्याख्या करता है भगवद गीता की, तो क्या समझना चाहिए? वो व्याख्या मनगढ़ंत है, गलत है। पहले किसी भी भगवद गीता का प्रवचन सुनने के लिए आप यदि जाते हो, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, फिर भी मन नहीं मानता, फलाने बाबा जी आ गए या ये बाबा वो बाबा कोई भी आ गए और मन नहीं माना और आप चले गए सुनने को, कोई बात नहीं, सुनिए। तो बोलने वाले को इस श्लोक के अनुसार तीन प्रश्न पूछना चाहिए, एटलीस्ट दो तो पूछना ही चाहिए। पहला प्रश्न, भगवान कौन है? दूसरा प्रश्न, मैं कौन हूं? और तीसरा प्रश्न, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? क्या पूछेंगे? और दोनों के बीच में संबंध क्या है? यदि वह व्यक्ति क्लियर क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उत्तर देते हैं तो समझना चाहिए कि इनके पास यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, ये ऑथोराइज्ड है बोलने के लिए। परंतु यदि इसका उत्तर गोल गोल मिलता है, ईश्वर परमात्मा आत्मा ब्रह्म ब्रह्मज्ञ ऐसा कुछ कुछ ऐसे जब यदि उत्तर आपको मिलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तब समझना चाहिए कि इनके पास ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का नहीं है, डुप्लीकेट लेके आए। हाँ, तो ज्यादा सुनना नहीं चाहिए। तो इस श्लोक को सभी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। क्या है श्लोक? सब बोलिए, मतलब भगवान भी है, मैं भी हूं, मेरे और भगवान के बीच में बहुत सुंदर प्रेम पूर्ण संबंध है और यही मेरा कायम रिश्ता रिलेशन संबंध है जिसको मैं नित्य रखना चाहता हूं। तोड़ना चाहता हूं क्या? नित्य रखना चाहता हूं, इस श्लोक का ये अर्थ है। तो इससे पता चल जाता है कि भगवान कौन है, है ना? वास्तव में बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं टीवी पर की सीरियल देख के, भगवान का जन्म वगैरह वगैरह टीवी में दिखाते हैं। हमने बताया था, इसकी चर्चा हुई थी, टीवी में भगवान का जन्म कैसा दिखाते हैं? एक एक कोठरी, काली कोठरी दिखाते हैं, घना अंधेरा है, वसुदेव जी और देवकी उसमें बांधे हैं उनके हाथ पैर, और भगवान का जन्म हुआ है कैसे? जूम लाइट आ गया है, बड़ा प्रकाश एकदम अंधेरे में आ गया और उस लाइट में से भगवान आ गए छोटे से। इसलिए ब्रह्मवादी लोग क्या कहते हैं, भगवान का जन्म कहां से हुआ? लाइट में से, क्योंकि प्रकाश पर आया और उसमें से भगवान आ गए। तो भगवान वास्तव में भगवान नहीं है, वास्तव में भगवान कौन है? लाइट। तो लाइट को ही देखते रहते जीवन भर, बहुत लोगों को हमने देखा ऐसा, दिया लाइट लगा देते देखते रहते जीवन भर, उसमें से भगवान आते ही नहीं। अरे भगवान से लाइट आता है, लाइट से भगवान कैसे आएंगे है? पर ये तत्व ज्ञान उनको समझाने के लिए नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा, इस श्लोक को आप सभी को समझाना पड़ेगा उनको। तो आपको जब भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे उनको पहले ये श्लोक बोल देने का, क्या? नत्वा हम जातुना शमि, क्या कर रहे हो लाइट वगैरह। कोई लाइट कहते हैं तो कोई आग बंद कर लो तो अंधेरे से आ जाते हैं, डार्क अंधेरा कर देते हैं, और शांत बैठो कहते तो भगवान अपने आप आ जाएंगे, वो अंधेरे से भी भगवान आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं, मतलब भगवान भगवान नहीं है। यह बहुत बड़ा ज्ञान है। इस श्लोक में इन सब बातों की चर्चा हुई थी, अब हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे का श्लोक क्या है, 13वां श्लोक 2.13 पढ़िए, सब एक साथ पढ़िए। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्थाओं में फिर वृद्धावस्था में और निरंतर बदलते रहता है, कैसा करता है, शरीर बदलते रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर भी शरीर ही बदलता है, ठीक है नहीं। तो पिछले श्लोक में कहा था नत्वेवाहम जातु नाशम, मतलब आत्मा नित्य है, और इस श्लोक में क्या कहा हमने, कहा सांख्य योग का अर्थ क्या है, इस दूसरे अध्याय का अर्थ क्या है, पहले श्लोक का अर्थ क्या है, दूसरे मुख्य अर्थ क्या है, आत्मा शरीर मरता है, शरीर मरता है आत्मा। अब यहां पे इस पहले 12वें अध्याय श्लोक में क्या है, आत्मा नित्य है, नत्वेवाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा नचे, मतलब आत्मा नित्य है, अमर है। इस श्लोक में क्या कहा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम शरीर नित्य है। 12वें श्लोक में कहा आत्मा नित्य है, 13वें श्लोक में कहा शरीर, हो गई व्याख्या पूर्ण। तो आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। तो इसमें आप इस श्लोक में जो भगवान ने एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल उदाहरण मतलब अप्लाइड साइंस है कि नहीं, ये अप्लाइड साइंस है। जैसे कि पहले क्लासरूम में क्या सिखाया जाता है, थ्योरी सिखाया जाता है ना, थ्योरी बताया जाता है ना, एसिड अल्कली वगैरह, और फिर तुरंत आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रयोगशाला में लिया जाता है और वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी प्रकार से पहले श्लोक में भगवान ने थ्योरी बताई नत्वाहम, और दूसरे श्लोक में प्रैक्टिकल बताया कि देखो किस प्रकार से तुम बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, प्रैक्टिकल है कि नहीं, प्रैक्टिकल देखा है ना, सभी को एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है भगवद गीता इज अप्लाइड साइंस, थ्योरी नहीं है केवल इधर से सुनो इधर से छोड़ दो, ऐसा नहीं है, अप्लाई करना है उसको। और यह प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि है। कौन यह प्रयोग नहीं कर सकता जिसके पास बुद्धि, तो हम तो प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हमारे पास बुद्धि है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें हमने बताया था कि शरीर पदार्थों से बना हुआ है, बराबर है, कैसे बना है, पदार्थों से बना है ना, पानी वगैरह मेटल ये वो सब, हवा पानी सब शरीर इन्हीं चीजों से बना हुआ है, और इसीलिए इसके प्रति आकर्षण का अर्थ होता है रजोगुण या तमोगुण। क्यों, क्योंकि जो प्रकृति है वो प्रकृति तीन गुणों पे आधारित है, बराबर है, उसी प्रकृति से शरीर बन गया है कि नहीं। जिस एलिमेंट से प्रकृति बनी है उसी एलिमेंट से शरीर बना हुआ है, और जिस तत्व से ये प्रकृति चलती है उसी तत्व से शरीर भी चलता है। और कौन सा तत्व, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। यदि हम शरीर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे अंदर रजो और तमो बढ़ रहा है कि नहीं। यह श्लोक की मुख्य बात है, शरीर रूपी पदार्थ का शरीर रूपी जो पदार्थ है मतलब शरीर जो है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते रहता है, बदलते रहता है, इसलिए अनरिलायबल है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हमने मुख्य बात कही जो इस श्लोक का सार है, जीव भगवान का अंश है, इसको भगवान से काटा नहीं जाता, इसको हमको देखते आना चाहिए। ये जो अंश है भगवान का हमारे हृदय में स्थित है, हमारे शरीर में, इसको हमको देखते आना चाहिए। आई टू सी आई, देखिए नहीं, आई टू सी आई, आय को देखने के लिए आय चाहिए, आय टू सी आय, मतलब आय मतलब मैं, और दूसरा ई वाई ई आय मतलब आंख। तो ये मैं मतलब इस आय को देखने के लिए ई वाई ई आय चाहिए, नहीं उसके बिना काम नहीं चलेगा, परंतु हमारा वो आय कभी खुलता ही नहीं है। वो जो आय को देखने वाला आय है वो खुलता नहीं है, और सारे संसार को देखने वाला आय नित्य खुला रहता है। 24/7 सपने में भी खुलता है, रात में भी खुलता है, सपने में सपना देख के हम सोते तो है लेकिन सपने देखते रहते हैं, वो आय खुला ही रहता है 24/7। इसलिए शंकराचार्य का वो हम श्लोक कहे थे, बालस्तावत क्रीड़ा आसक्त, मतलब बचपन में व्यक्ति खेल कूद में आसक्त रहता है, तरुण अवस्था में तरुण तरुणी या तरुणी तरुण की ओर आकर्षित होता है उसमें आसक्त रहता है, वृद्धावस्था में चिंताओं में आसक्त रहता है, करते ही रहता है चिंता, चाहे कितना ही बोला चिंता। न त्वम शोचितम अर्हसी, क्यों शोक करते हो, मत करो शोक, तो भी व्यक्ति मानता है नहीं, उस चिंताओं के प्रति आसक्त रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जीव भगवान का अंश है ये समझ के इन सब आसक्तियों को छोड़ के जीव के प्रति आसक्त होना चाहिए, पर ये होता नहीं है। अब इतना हम आसक्त होते रहते हैं बचपन से लेके तो बुढ़ापे तक, तो कृष्ण के प्रति आसक्त कब होंगे बताओ, टाइम है? बचपन में खेल कूद, युवावस्था में तरुण तरुणी की ओर तरुणी तरुणी का आकर्षण रहता है, वृद्धावस्था में चिंता विचार, तो अब कृष्ण के प्रति कब आसक्त होंगे? ऑल द टाइम तो हम आसक्त है किसी किसी के प्रति, अब कृष्ण के प्रति आसक्त कब होंगे? इस प्रश्न को गंभीरता से रोज अपने आप को पूछना चाहिए, यह प्रश्न, मैं कृष्ण के प्रति कब आसक्त हूं? अपने आप को यह प्रश्न उठते से ही पूछना चाहिए, मैं कृष्ण के प्रति आसक्त कब हूं? पास्ट यदि पिछला बुक खोल के देखे तो कितने आसक्तियां, बिलियन ट्रिलियन आसक्तियां थी, अनेकों व्यक्तियों के प्रति, विचारों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, लेकिन कृष्ण के प्रति आसक्त होने को समय अभी तक नहीं मिला है। कुछ कुछ लोगों को पूछा जाता है, प्रभु जी जब भगवान समय देंगे तभी ना, हाँ जब भगवान बुलाएंगे तभी ना जाएंगे वृंदावन, भगवान करेंगे तब हम करेंगे ना, वो कुछ करते ही नहीं, भगवान बैठे रहते हैं निठल्ले, हम कितना कार्य करते हैं, कितने आसक्त, कितने विचार है हमारे मन में, भगवान को एक भी विचार है? कुछ विचार नहीं है। तो वो जब सब कुछ करेंगे तब हम थोड़ा बहुत करेंगे, यदि उनने किया तो, मतलब हम भगवान को भगवान न मानते हुए क्या मानते हैं, हमारा नौकर। जैसे सुबह उठते से हमको घर में नौकर हो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने झाड़ू पोछा करना चाहिए, दूध चाय जो भी है गर्म देना चाहिए, नाश्ता बनाना चाहिए, मेरे सारे कार्यकलाप तो उसने करना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत करूंगा। उसी प्रकार से हम सोचते कि ये तो सब भगवान करेंगे, वो तो नौकर ही है बने बैठे, हमको क्या करने की आवश्यकता है। तो यह तत्व बहुत विचित्र, इस प्रकार से विचार जो होते हैं वो बड़े नास्तिक विचार होते हैं, ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कृपा नहीं करते हैं, लेकिन पहले भगवान देखते कि आपके हृदय, आपका हृदय निर्मल है कि नहीं है। हमारा हृदय निर्मल चाहिए, हमारे हृदय में पहले इच्छा होनी चाहिए, हमारे हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति चाहिए, तभी तो कृपा प्राप्त होगी, भगवान तो बहुत दयालु है, वो तो सबको सभी कुछ देते हैं, सभी को सब कुछ मिला है, किसको क्या नहीं मिला है, सभी को सब कुछ मिला है। परंतु प्रेम यदि चाहिए, आप नौकर को सुबह से शाम तक काम को लगा रहे हो और बाद में बोल रहे कि मैं अपने नौकर से बहुत प्रेम करता हूं, हाँ? सुबह उठते से ही रात को सोने तक नौकर को दौड़ाते हो और फिर शाम को बोलते अरे मैं तो अपना नौकर बहुत अच्छा है, उनसे प्रेम करता हूं। सुबह से शाम तक भगवान के ऊपर ही सब, भगवान करेंगे तो करेंगे, भगवान करेंगे कुछ नहीं, सब भगवान के ऊपर। और जब भगवान ने पूछा कि भाई थोड़ा सा प्रेम मेरे साथ करो, तो नहीं नहीं समय नहीं है, थोड़ा मेरे प्रति आसक्त हो जाओ, नहीं नहीं ऑलरेडी आसक्त हूं, अब तुम्हारे प्रति कब आसक्त होगा, कितनी बार तो मैं आसक्त हुआ, अभी भी आसक्त हूं, आसक्ति तो गई नहीं, अब आपके प्रति आसक्त कैसे हो सकता हूं, ऑलरेडी रिजर्व, नो चांस दिस लाइफ टाइम। तो इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के प्रति आसक्त होंगे तो न मुह्यति, तो हमको मोह नहीं होगा। धीर पुरुष जो होते हैं वो इस प्रकार से मोहित नहीं होते क्योंकि भगवान के प्रति वो आसक्त होते हैं। पिछले दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक पढ़िए। तो अभी देखिए 12वें श्लोक में कहा आत्मा नित्य है, 13वें श्लोक में कहे भगवान शरीर अनित्य है, 14वें श्लोक में कह रहे कि शरीर की परिस्थितियां अनित्य है, देखिए नहीं कौन सी परिस्थिति, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह, शीत उष्ण सुख दुख, देखिए नहीं, मतलब आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है और ये अनित्य शरीर अनित्य परिस्थितियों में गिर गया, आके पड़ गया यहाँ पर, परिस्थिति भी अनित्य है, एक जैसी स्थिति रहती है क्या सबकी, रहती है, धूप है कभी छाव है, कभी उष्ण है तो कभी शीत है, कभी सुख है तो कभी दुख है। तो इस श्लोक में भगवान परिस्थितियों का जो परिवर्तन है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इंद्रियों को मात्रा कहा है, इंद्रिय सदा सुख और दुख को ही मापते रहती है, मात्रा मतलब मापने का साधन, मोज माप करते हैं ना, मेजरमेंट मात्रा, तो या इंद्रियों को मात्रा का, मात्रा स्पर्शास्तु कहते हैं, मात्रा मतलब ये मापते रहता है, क्या मापते रहता है, ये इंद्रिया नापते रहती है, मापते रहती है, नापते रहती है, क्या नापते रहती है, सुख और दुख, है कि नहीं, सुख और, ये दो ही बातें समझती है, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि, फायदा और नुकसान, इसके अलावा कोई तीसरी बात है संसार में, है क्या, हाँ नहीं है ना। तो इसी प्रकार से यह जो है इस श्लोक में हमने चर्चा बड़ी विस्तार से कही की थी कि व्यक्ति को सुख और दुख, लाभ और हानि, इसके भी थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए, उसके ऊपर कुछ तो है संसार में, है? अब वो क्या है आप रिफ्रेश कीजिए घर पे जाके। सुख और दुख को भगवान ने इसमें सजेशन दिया है, सर्दी और गर्मी होगी, दुख आएगा, सुख आएगा, उष्णता रहेगी, उष्म रहेगा, सब रहेगा, ये सब रहेगा, लेकिन तो फिर क्या करेंगे, सब रहेगा तो हाँ सहन करना पड़ेगा, मतलब करना क्या है, सहन शक्ति बढ़ाना है, एक ही सॉल्यूशन है, सहन शक्ति यदि नहीं बढ़ाएंगे तो सुबह से लेके शाम तक कलह है, कलह ही होते रहेगा प्रत्येक व्यक्ति के साथ, इसलिए सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। और भक्त इसमें नहीं फंसते हैं क्योंकि भक्त जानते हैं ये सब जो है परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, इसलिए ऐसे परिस्थिति के प्रति भक्त उदासीन नहीं होते हैं या बहुत ज्यादा उत्तेजित भी नहीं होते, भक्त इसलिए हमेशा सहन करते हैं, वो जानते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक पढ़िए। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। तो सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक कहता है धीरस्तत्र न मोह्यति, मतलब धीर पुरुष क्या नहीं करते, मोहित नहीं होते। फिर 14वें श्लोक में बताया है कि धीर पुरुष क्या करते हैं, सहन करते हैं। और इस श्लोक में बताया है सहन करने का परिणाम क्या है, अमृतत्व कल्पते, मतलब वह भगवत भगवान की भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मतलब धीरस्तत्र न मुह्यति, वो मोहित नहीं होते हैं इसलिए वो सहन करते हैं। मतलब यदि हमारी सहनशीलता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, न मुह्यति, मोहित नहीं होना पड़ेगा। मतलब मोहित नहीं होने से या भ्रमित नहीं होने से या हमेशा कंफ्यूजन में नहीं रहने से सहन शक्ति बढ़ती है, इसका अर्थ यही है ना। और सहन शक्ति जब बढ़ती है तो भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। यह 15वें श्लोक तक अर्थ है। अब 15वें श्लोक में पहली बार भगवान बता रहे हैं अमृत तत्व। अमृत तत्व मतलब आध्यात्मिक प्राप्ति। अभी तक भगवान ने आपको आध्यात्मिक लाभ होगा ऐसे कहीं नहीं बताया है, इस श्लोक में पहली बार बताया है कि नहीं। अमृत तत्व केवलम, केवल आपको आध्यात्मिक प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जिस पुरुष को इंद्रिय विषय सुख दुख व्यथित नहीं करते उसी को पुरुष कहते हैं। पुरुषम पुरुषर्षभ, पुरुषों में पुरुष, पुरुषों में उत्तम पुरुष कौन है, जिसको इंद्रिय व्यथित नहीं करते हैं, बार बार इंद्रिय टॉर्चर नहीं करते रहते हैं, उसी के इंद्रिय उसी को ही टॉर्चर नहीं करते हैं, वह व्यक्ति पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है। सुख को कैसा सहन करे, इन सब बातों की चर्चा हुई, लोभ मोह मद मत्सर। सहन करना मतलब क्या सहन करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को सहन करना, इनमें नहीं फंसना। तो इस प्रकार से सहन शक्ति बढ़ाइए। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, तो नाश तो विद्यते भावो, मतलब शरीर, मतलब तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब भौतिक शरीर क्या है, भौतिक शरीर परमानेंट नहीं है और आत्मा परमानेंट है, इतनी सिंपल बात है। परंतु सत मतलब आत्मा, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, मतलब सत जो है मतलब आत्मा जो है वो क्या है, अपरिवर्तित है, और असत मतलब शरीर जो है परिवर्तनशील। अब वही बात फिर से बताई गई है, शरीर और शरीर के अंदर जीव के बीच अंतर का वर्णन इसमें भगवान कह रहे हैं। भगवान उपदेश देना शुरू किए हैं कि अज्ञानी लोगों को यह बात बहुत जल्दी समझाना चाहिए, कौन सी बात, कि शरीर मरने वाला है, आत्मा मरने वाला नहीं। इस बात को बहुत जल्दी से जल्दी सारे संसार को बताना चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, अर्जेंटली बताना चाहिए, नहीं तो सारा संसार इसीलिए तो दुखी है। सारे संसार में बोलते कौन सुखी है प्रभु जी, इस संसार में कैसे सुखी होगा, सहन करने की शक्ति तो है नहीं, सुखी कैसे हो सकता। तो इसलिए शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, असत का भाव नहीं और सत का अभाव नहीं, है ना। इनका इन सब विषयों को आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें हमने आत्मा के लक्षण की ओर चर्चा की थी, क्योंकि समय बड़ा कम है, हम आगे का श्लोक लेना चाहते हैं एक आज कि ये रिफ्रेश, तो आप इसलिए तो आपको सीडीज वगैरह दी जाती है, उसको सुनते रहिए। तो इस दूसरा आगे का श्लोक, सत्रहवा श्लोक, सत्रहवा श्लोक क्या है? अविनाशी तू, क्या कहा है पहले? तू अविनाशी, मतलब आत्मा अविनाशी है जो सारे शरीर में व्याप्त है। येन सर्वम इदम तत, मतलब सर्वम इदम तत, सब सब व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने की नष्ट करने को कोई भी समर्थ नहीं है, इसको कोई नहीं मार सकता है। लेकिन इसमें बताया गया है जीवात्मा का वर्णन कहा है, क्या कहा है पहले? अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदम ततम, इस शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। क्या व्याप्त है? चेतना व्याप्त है। वो चेतना कहां से आई है? आत्मा से आई है, राइट? तो आत्मा से जब ये चेतना आई है तो इस चेतना के लक्षण क्या है, किस प्रकार से, कितने प्रकार की चेतना है बताइए? विकसित चेतना और पूर्ण विकसित। आवृत्त चेतना मतलब क्या? मतलब वो कभी भूल, आवृत्त है, कवर्ड है, कहीं जा नहीं सकती इच्छा की है, फिर भी कोई पेड़ सोचे भी कि जाना है बस तो भी नहीं जा सकता, उसको वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस है पर कैसी? आवृत्त। दूसरी कौन सी है? संकुच चेतना है, थोड़ी बहुत एक उसके ऊपर क्या है? निर्बंध है। आवृत्त तो नहीं है, उसके आगे की है, संकुचित है। उसको उसका उदाहरण क्या है? प्राणी, उनकी चेतना संकुचित होती है, स्वतंत्रता है खाने पीने की, लेकिन फिर भी कुछ नियम है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। शेर कभी घास नहीं खा सकता, बकरी कभी मांस नहीं खा सकता। इस प्रकार से यदि वो अपना इलाज करवाना चाहे बीमार पड़ गए तो नहीं कर सकते, जानते हैं बीमार हो गए, जख्म हो गई, लेकिन इलाज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से चेतना के स्तर है, आवृत्त चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। तो मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित यह जो चेतना का प्रकार है वो किसमें है? मनुष्य में है। और वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो पूर्ण विकसित भी हो सकता है, नहीं तो संकुचित भी हो सकता है। ये जो मुकुलित चेतना है, जो हमारा उदाहरण, जो हम जिस स्तर पे है उसमें हमको चांस है, चॉइस इज योर्स, जानवर बनना है कि मनुष्य बनना है, चॉइस इज योर्स। हाँ, मनुष्य भी बना, जैसे हम जिस स्तर पे है संकुचित चेतना, अभी तक हम मूर्ख बने बैठे हैं। इसका कारण यह है कि विकसित की ओर भी नहीं जा रहे हम, भले ही हम संकुचित की ओर नहीं जा रहे लेकिन विकसित की ओर भी नहीं जा रहे, बुरा नहीं कर रहे लेकिन अच्छा भी तो नहीं कर रहे ना, तो अच्छा तो करना चाहिए। तो इसलिए हमारी मूर्खता है ये कि हम आगे का रास्ता नहीं जल्दी देख रहे, इस प्रकार से इस श्लोक में कहा गया है। तो जीवात्मा का वर्णन इसमें हुआ है कि उसकी साइज क्या है, किस प्रकार से, तो सब आप रिफ्रेश कर लीजिए। अभी ये सब चर्चा हम नहीं करेंगे, अभी हम डायरेक्ट पहला, इसके पहले का श्लोक देखेंगे और फिर आज का श्लोक देखेंगे। आपको सभी के पास सीडीज है, क्योंकि ये रिफ्रेश मतलब 4-5 घंटे का काम है, एक अध्याय का रिफ्रेश। तो आप सब सीडीज में जो भी प्रवचन है अच्छे से सुनिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक सभी को क्वेश्चन पेपर मिलेगा प्रश्न क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो पहले अध्याय का बाकी जो भी कुछ बचा है वो पूरा रहेगा उसमें, और उसी के साथ दूसरे अध्याय का भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो कि आपको उसके 10 दिन बाद वापस दे, 15 दिन बाद वापस देना है। पहला तुरंत नेक्स्ट वीक आपको पहले अध्याय का क्वेश्चन मिलेगा, दूसरे भी अध्याय का क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन सेट मिलेगा आपको, उसके 8 दिन बाद पहले अध्याय का उत्तर देना है और 15 दिन बाद दूसरे अध्याय का उत्तर देना है। तो इसलिए सभी बहुत अच्छे से 30वें श्लोक तक, 2.30, 30वें श्लोक तक बहुत अच्छे से सुनिए श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसलिए सबसे पहले क्या है, तो आप उसको बहुत अच्छे से श्रवण कीजिए। सारे प्रवचन सभी के पास है, सीडीज सभी के पास है, नोट्स भी सभी के पास है, निकाले सभी ने लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या, है क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसके पहले क्या प्रॉब्लम है, पेपर लेने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि पेपर लेने में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? और पेपर में तो प्रॉब्लम ही है, आंसर थोड़ी है। पेपर लेने में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, पेपर लेने के लिए सभी आइए। है ना, तो हम अभी डायरेक्ट 2.31 शुरू करते हैं। पढ़िए श्लोक। स्वधर्मापि चावेक्ष न विकम्पि तुमर्हसि धर्मात् युद्धात् श्रेयात् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब हम दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक तक हमने चर्चा की, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ तक 30 तक, 11 से 30 तक, विशेषकर 18 से 30 तक जो हमने चर्चा नहीं की उसका सार पिछले श्लोक में है, जो कि हमने लास्ट समय बताया था। तो पिछले श्लोक में क्या सार है, जीवात्मा का अस्तित्व का अर्थ क्या है, भगवान का, और जीवात्मा का अस्तित्व अर्थात भगवान का अंश। कोई भी जब कहेगा जीवात्मा, आत्मा, जीव, तो हमारे मन में तुरंत क्या बात आनी चाहिए, भगवान का अंश। कोई कहे जीव आत्मा कुछ भी इसके प्रति कहे, आपको पूरा सार समझ में आना चाहिए, वो एक शब्द में है, वो क्या, भगवान का अंश। तो 18 से 30 तक का जो सार है एक ही शब्द में कि जीवात्मा का अर्थ है भगवान का अंश। बाद में आत्मा मरता नहीं, शरीर अमर नहीं, दूसरी बात। तीसरी बात, आत्मा को मृत्यु नहीं है कि नहीं, आत्मा को मृत्यु नहीं, इसका अर्थ यह है क्या कि हम हिंसा करते रहे। मैं आगे के श्लोक का सार बता रहा हूं, मतलब पहले के श्लोक का, 18 से जो मैंने छोड़ दिया है, 18 से 30 तक चार लाइन में क्या प्रश्न है। आत्मा मरता नहीं, इसका अर्थ यह है क्या कि मैं बकरे को काटूं, मुर्गे को काटूं, आत्मा तो मरता ही नहीं, प्रभु जी काटो इनको, मारो, कोई भी आत्मा मरता नहीं, पाप तो लगने वाला नहीं है, खाओ मार के, है ना। 22-23 में इसकी चर्चा हुई थी, उसके पहले भी हुई थी, क्यों ऐसा, फिर ये सही है क्या। आत्मा मरता नहीं तो फिर जीव हत्या करना पाप नहीं होगा ना प्रभु जी, तो क्या आप समझते इस बात से है कैसे। हाँ, भले ही आत्मा अमर है पर हमको उस शरीर को काटने का अधिकार किसने दिया, हमको अधिकार नहीं है। आत्मा अमर है, शरीर अनित्य है, ये सब ठीक है, पर हमको अधिकार थोड़ी है। तो जिसको अधिकार है वो करे, तो अधिकार किसको है, तो उसकी चर्चा कर्म मीमांसा आगे के अध्याय में होगी। अधिकार किसको, कौन से कर्म कौन करता है, क्षत्रिय के क्या कर्म है, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, मतलब समाज में कितने प्रकार के लोग कितने प्रकार के कार्य कर्म करते हैं, उसके ऊपर आधारित है। पर निश्चित तौर पे मनुष्य को उसको मारने का अधिकार, तो कई लोग कहते हैं कि उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे है कि नहीं, समझो बॉम्बे में बकरे ही बकरे और मुर्गे ही मुर्गे हो गए तो हमको भाग जाना पड़ेगा, ऐसा पूछते हैं लोग। तो मनुष्यों की संख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा तो क्या करेंगे, मनुष्यों को खाएंगे, नहीं खाएंगे ना, मतलब घूम फिर के बात खाने पे क्यों आती है मतलब संख्या बढ़ गई खाओ, सब कुछ हो गया खाओ, कितना इंद्रिय तृप्ति कितना। परीक्षित महाराज को भागवतम में मैंने पहले बताया था, चर्चा हुई थी हमारी, परीक्षित महाराज को किसने प्रश्न पूछा, महाराज 4 दिन हो गए कुछ नहीं खाए आप, न पानी न प्रसाद कुछ भी नहीं। परीक्षित महाराज कहे क्या खाऊं और क्या पीऊं, न जाने कितने जन्म लिए और प्रत्येक जन्म में कितना खाया और कितना पिया, और अभी भी मेरी भूख मिट नहीं रही है, समाधान नहीं हो रहा है, प्यास मिट नहीं रही है, तो अब मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अब मैं अपने आत्मा को संतुष्ट करने वाला हूं। आत्मा की संतुष्टि कथा श्रवण में होती है, इसलिए अभी इनके चक्कर में या इनके जंजाल में मैं नहीं फंसूंगा। और संसार में हम क्या सोचते हैं या संसारी लोग क्या सोचते हैं, खाओ, 26 वेव्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक संसार की भौतिक उत्पत्ति के 6 लहरें नहीं, बहुत भयंकर लहरें, 6 वेव्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, उसमें भूख और प्यास, बड़ी भयानक सुनामी से भी डेंजर लहरें है, पूरे जीवन को उध्वस्त कर देती है। मनुष्य जीवन पूरा उसी में लग जाता है, खाने पीने की अरेंजमेंट में, परंतु यह करना उचित नहीं है, थोड़ा आध्यात्मिक सोचना चाहिए, आत्मा के संतुष्टि के बारे में सोचना चाहिए। तो हमने इस बात की चर्चा अभी तक का जो सार है उसमें यह है कि हिंसा करने का हमको अधिकार नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, मनुष्य जन्म में जीवेर दया है, जीवेर हिंसा नहीं है। है क्या हिंसा? जीवेर जीव के ऊपर दया, यह मनुष्य का लक्षण है कि नहीं? फिर अंत में युद्ध तो करना ही पड़ता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहे 29-30 में कहीं कि धर्म के लिए युद्ध करना होता है, युद्ध करो, हिंसा करनी होती है, लेकिन कब? धर्म के लिए, धर्म के लिए हिंसा, क्योंकि उसमें भगवान का उपदेश है। धर्म मतलब भगवान, भगवान मतलब धर्म। जब भगवान बोलते युद्ध करो तो धर्म ही बोल रहा है युद्ध करो। तो इस प्रकार से अर्जुन ने शोक नहीं करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो साक्षात धर्म है वो ऐसा कह रहे हैं। और शोक किस बात का करे? तो भगवान को भूल यदि जाते हैं तो उस बात का हमको शोक होना चाहिए। उसमें हमने उदाहरण क्या दिया था? हनुमान जी ने आग लगाई और बाद में उनको शोक होने लगा, अरे अरे मैंने बड़ा अपराध कर दिया है? हनुमान जी ने लंका को आग लगा दी और बाद में सोचने लग गए कि अरे उस अशोक वाटिका में माता सीता बैठी है, उधर भी आग लग गई होगी, मैंने क्या कार्य कर दिया है? तो उनको बड़ा आपराधिक लगने लगा, कितना बड़ा अपराध मेरे से हो गया। तो इस प्रकार से पश्चाताप करना चाहिए। यदि हमारे से सेवा में कुछ अपराध भी होता है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन चिंता और शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, और चिंता और शोक यदि करना ही है तो केवल सेवा में हमारे ओर से जो कुछ भी कमी हुई है वो कमी के ऊपर चिंता और शोक करना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान पहले अभी तक जो बताए वो पूरी की पूरी चर्चा आत्मज्ञान के ऊपर की है, आत्मा का ज्ञान। अब इस श्लोक में कर्म कांड की मतलब कर्तव्य करके सुख प्राप्ति। देखिए पहले उच्च स्तर की बात की है आत्मज्ञान, फिर अब यदि व्यक्ति को आत्मज्ञान में थोड़ा सा टफ लग रहा है, डिफिकल्ट जा रहे हैं, तो भगवान अब क्या बता रहे? ठीक है, कर्तव्य कर्म को समझो, उसके नीचे का स्तर, ज्ञान के नीचे का स्तर। वास्तव में इस श्लोक में जो दूसरे अध्याय का दूसरा जो श्लोक है ना, वो क्या है? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषम समुपस्थितम् नार्यम अजिष्टम, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कहां से ये गंदगी तुम्हारे दिमाग में भर गई है? इस प्रकार से डायरेक्ट बोल रहे, कुतस्त्वा कश्मल इदम है, और वो भी कब? विषमे समुपस्थितम। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़िए, अनार्यम अजुष्टम, कह रहे अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अरे अनार्य वाली बात कर रहे हो, अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, जिस जो बात तुम कर रहे हो उस बात में कुछ दम ही नहीं है, सब बोगस बात है एकदम 100%। उसी बात को भगवान इस श्लोक में विस्तारित रूप में बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मनुष्य देह और देही के विवेक को नहीं जान सकता। मतलब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए? कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई बात नहीं हो सकती। अभी तक कहे आत्मज्ञान को समझो, आत्मा को समझो, आत्मा शरीर भिन्न है, सब कुछ अभिसार में हमने पढ़ा। अभी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए क्या है? आगे पढ़िए पूरा, कोई कार्य नहीं है। इसका अर्थ है Avoidance of duty leads to degradation, infamy. Duty कर्तव्य यदि नहीं करोगे तो नाम खराब हो जाएगा, infamy, अकीर्तिकरम। यदि कर्तव्य नहीं करोगे, धर्म के ऊपर आधारित कर्तव्य को टालोगे तो अपकीर्ति होगी, कीर्ति नहीं नाम नहीं होगा बल्कि नाम खराब हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य करो। इसका अर्थ है जो मनुष्य देह और देवी के बीच में का जो विवेक है, देह और देही के बीच में जो अंतर है उसको जो नहीं समझ सकता, शरीर और आत्मा के बीच में जो अंतर है, वो जो व्यक्ति इस अंतर को नहीं समझ सकता उसके लिए भगवान कह रहे हैं कर्तव्य करो। तो पहले क्या करो, फिर कर्तव्य करो, अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करो। और कर्तव्य कर्म करते करते आपको पता चल जाएगा कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम, मतलब भगवान ऑप्शन दे रहे हैं यहां पे। भगवान क्या कह रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वधर्म करो। स्वधर्म क्या है, इसमें बताया है ना श्लोक में क्या, स्वधर्म मपिचावेक्ष, सबसे पहला शब्द है स्वधर्म। कर्म करो अपने धर्म के अनुसार, अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करो, कर्तव्य करो स्वधर्म के अनुसार। स्वधर्म क्या है, स्वार्थ और अभिमान, स्वार्थ अभिमान और फल की इच्छा। सबसे पहली बात तो स्वार्थ और अभिमान, ये स्वार्थ और अभिमान करके, स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके जो कर्म करते हैं सभी के हित के लिए, अपने अकेले के हित के लिए नहीं, मेरे अकेले के हित के लिए नहीं, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सारे सभी समाज के हित के लिए जो कर्म करते हैं उसको स्वधर्म कहा है। ऐसा क्यों कहा होगा भगवान ने, सारे समाज के हित के लिए, मतलब यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ने उसके धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसका धर्म, स्वधर्म क्या है, जो भी कुछ स्वधर्म है उसका, उसमें क्या होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए और समाज का कल्याण होना चाहिए। क्षत्रिय भी है तो उसने क्या करना चाहिए, उसका धर्म क्या है, रक्षा भी करना है तो भी उसमें होना क्या चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए और वो जो भी कर्म कर रहा है उसकी वजह से समाज का कल्याण होता है क्या, ऐसा कोई भी मतलब कृष्ण अर्पण करना चाहिए, वो तो आगे की स्टेज है। भगवान ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। कोई व्यक्ति आत्मा और शरीर के बीच में का अंतर नहीं समझ सकते, ज्ञान योग नहीं समझते, तो उसको कर्म योग समझा रहे हैं। भक्ति योग तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, परंतु जो ज्ञान नहीं समझ सकता है उसको कर्म बता रहे, कैसे काम करोगे भैया, तो काम करते वक्त ध्यान रखो स्वार्थी प्रवृत्ति से काम मत करो, है स्वार्थ प्रवृत्ति से काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अभिमान मत रखो और कर्म ऐसा करो कि जिसमें सभी का हित हो, अपना तो हित है ही है, अपने साथ सभी का हित होवे। तो सभी वर्णों के लिए यह व्याख्या उपयुक्त है, इसलिए उसको स्वधर्म कहा गया, कोई भी धर्म, और यह धर्म का पालन ही कर्मयोग है नहीं। परंतु मनुष्य परम तत्व को जानना चाहता है, मनुष्य भगवान को जानना चाहता है, परंतु भगवान को जानते वक्त वैराग्य नहीं चाहता, डिटैचमेंट नहीं चाहता। भगवान को जानना है, परम तत्व को जानना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन चाय नहीं छूटेगी, चाय छोड़कर नहीं, चाहे भगवान हो चाहे परम तत्व कुछ भी हो, एक कप चाय चाहिए, नहीं तो गया परम तत्व उधर। है कि नहीं। इसलिए व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। परम तत्व को समझने की लालसा बहुत है, इच्छा बहुत है, ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा बहुत है, पर वैराग्य नहीं चाहता। इसलिए बाकी संप्रदाय या बाबा जी लोगों की कथा देखिए तो करोड़ों लोग आ जाएंगे। और हमारे आचार्यगण जब कथा करते हैं तो कितने लोग आते हैं, जो वास्तव में वैरागी है वो आते हैं, जिनको वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त करना है वैराग्य बन के, वैरागी होके, वैराग्य में डिटैच होके वही डायमंड खरीद सकता है, वही यहां आ सकता है। बाकी दूसरे तो फिश मार्केट में ही घूम रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि वैरागी नहीं हो सकते, डिटैच नहीं हो सकते, अनासक्त नहीं हो सकते, इसलिए उनको कर्म योग बता दे रहे हैं। जाओ काम करो, करते रहो काम, कर्म करते रहो। तो इस प्रकार से स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। तो स्वधर्म को देखते हुए भी, मतलब यदि तुम्हारा अपना भी धर्म हम समझे क्षत्रिय, अर्जुन तुम कौन हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म भी यदि हम समझे, चलो क्षत्रिय धर्म की बात करें, बाकी आगे की नहीं ना पीछे की नहीं, ओनली क्षत्रिय धर्म, ज्ञान व्यान छोड़ दो। क्षत्रिय धर्म की भी यदि बात करें तो तुमको संकोच नहीं करना चाहिए कर्म करते वक्त, सिंपल बात है। अरे मनुष्य हो तो कम से कम भक्ति, भक्ति तो बहुत आगे की बात है, मनुष्य के जैसा तो रहो। अरे क्षत्रिय है तो बाकी सब छोड़ दो, क्षत्रिय के जैसा तो रहो, वो कार्य करते हुए भी आपको संकोच है। भगवान अर्जुन को यहां पे ये कह रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था न सोचि तुम अर्हसि, पिछले श्लोक में अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, आखिरी का लाइन क्या है पढ़ी, न विकम्पि तुम अर्हसि, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और संकोच नहीं करना। शोक तो नहीं करना चाहिए पहले इसमें कहा है, इसमें कहे है संकोच नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा डेंजर है। यहां हमको एक बात समझ में आ रही है कि अभी तीसरावें श्लोक तक भगवान ने जो उपदेश दिया है उसमें हो सकता है अर्जुन का थोड़ा बहुत शोक तो कम हो गया, क्योंकि भगवान जैसे कहे न सोचि तुम अर्हसि, अभी सेम बात यहां नहीं कह रहे, यहां वो कह रहे न विकम्पि तुम अर्हसि, मतलब अभी शोक तो कम हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन संकोच उत्पन्न हो रहा है, संशय संकोच, शोक कम हो गया संकोच बढ़ गया, बहुत डेंजरस सिचुएशन, संकोच संशय कितना भयानक बात है, संकोच है। क्या अपने सगे संबंधियों की हत्या करना उचित है, संकोच है, संशय है, भगवान बता रहे हैं, लेकिन फिर भी संकोच है। भगवान बता रहे सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, फिर भी शुक्रवार का व्रत है, संकष्टी चतुर्थी है, गुरुवार को साई बाबा है, भगवान बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज, सारे आचार्य गण बता रहे, पूरी परंपरा बता रही है, लेकिन फिर भी अनेको मतलब संकोच, भगवान की बात पे संकोच है। संकोच नहीं होना चाहिए, प्रार्थना, भगवान का नाम, भगवान के उपदेश, भगवान के प्रति की गई प्रार्थनाएं आरतियां, इनके ऊपर संकोच नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक साधु महाराज थे, एक गांव में गए, भक्त थे बेचारे, एक गांव में गए प्रचार करने के लिए साधु बाबा। उस गांव में एक बालक, छोटा सा बच्चा बालक, बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया डेंगू की वजह से, मच्छर काट के बहुत इलाज किए, बहुत गांव के लोगों ने बहुत इलाज किए, लेकिन इलाज हुआ नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो समहाउ ये महाराज उस गांव के रास्ते से जा रहे थे और वहीं पे एक वृद्ध माता जी, उन्होंने देखा ये साधु है और मेरे गांव का वो एक बालक बड़ा परेशान है, बीमार है, दवाइयां भी काम नहीं कर रही है, और ये साधु है, हो सकता है ये कुछ करे, कुछ प्रार्थना करे। तो उन्होंने उनको प्रार्थना की, इस माता जी ने की कृपा करके आप गांव में चलिए, वो बालक काफी गंभीर रोग से पीड़ित है, आप चलिए। तो महाराज सोचे ठीक है, जीव दया तो साधुओं का लक्षण ही है, तो गए उनके साथ गांव में। अब साधु महाराज ने देखा कि ये बालक बड़ा विकट परिस्थिति में है, तो महाराज बैठ गए, सारा गांव जमा हो गया वहां पे, कोई महाराज आए हैं, महाराज आए हैं और उस बालक को ठीक करने के लिए आए हैं। महाराज बड़े प्रेम से बैठे नीचे, आंख बंद किए और भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उनका नाम लेने लगे। अब इतने में बहुत सारे गांव वाले आ गए, उसमें से एक खड़ा हो गया और एक खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्ला के बोलने लगा, अरे इतने सारे इलाज किए, इतनी दवाइयां इनको दी, सारे वैद्य लोग आ गए, सब कुछ किया, वो ठीक नहीं हुआ, आपके प्रार्थना से क्या ठीक होगा, वो आपके नामस्मरण से कहां ठीक होने वाला है, वो ऐसा वो बोला। तो महाराज ने आंख खोली और उसको जोर से चिल्ला के बोले, तुम मूर्ख हो, तुरंत यहां से निकल जाओ, ऐसा बोले महाराज। अब ऐसा बोलने से तो वो और क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि एकदम लाल होके हाथ में शस्त्र उठा के जस्ट मारना ही था, लेकिन मारा नहीं, पहले चिल्लाया, जोर से चिल्लाने लगे, तुम दूर हो जाओ यहां से, तुम कैसे कह सकते हो विश्वास के साथ कि तुम्हारे मंत्र उच्चारण से इस बालक का कल्याण हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। जोर से एकदम क्रोधित होकर सारे लोग डर गए और एकदम उसको रास्ता बाजू हट गए, जैसा नॉर्मली होता है ना, कोई व्यक्ति एकदम शस्त्रास्त्र रास्ते पे निकलता है मारने के लिए, किसी को सब भाग जाते हैं कोऑपरेशन नहीं है ना कलयुग में, तो वो सब भाग गए। तो महाराज ने उसके तरफ देखा, उसका क्रोध इतना अनावर कि बस पूछो, तो वो फिर पूछा, बताओ इंसिस्ट कर रहा है महाराज को, बताओ इसका जवाब दो। तो महाराज एकदम शांत है, बड़े शांति से उन्होंने कहा, मैंने बोले केवल तीन, केवल एक तुच्छ शब्द बोला, एक एकदम तुच्छ शब्द बोला, वो ये कि तुम मूर्ख हो, मतलब मूर्ख, यहां से निकल जाओ, तुमको मैंने केवल एक मूर्ख शब्द बोलने से तुम्हारे अंदर इतनी हलचल हो सकती है, तुम इतने भयंकर क्रोधित हो सकते हो, और इस तुच्छ शब्द के कारण इतने सारे लोग यहां से भाग जा सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति ये इस तुच्छ शब्द में है, तो मैं जो इतना दिव्य शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, इतने ऊंचे शब्द का, दिव्य शब्द का उच्चारण कर रहा हूं, उसमें कोई शक्ति नहीं होगी, हा? जो तुच्छ शब्द उच्चारित करता हो तो सारा संसार क्रोधित हो जाता है, और दिव्य शब्द उच्चारण से कुछ भी नहीं होगा, हा? बताइए कुछ होगा कि नहीं। तब वो समझ, थोड़ा सा समझ में आ गया उसके, कह रहे वास्तव में मैं तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, और इन्होंने बोला क्या, हे मूर्ख तुम जाओ यहां से, बस इतना ही बोला, तो कितना चेंज आ गया समाज में, सारे लोग भाग गए, मैं क्रोधित हो गया हूं, इतना बड़ा बदलाव। तो वास्तव में प्रार्थना में कुछ तो, नाम में कुछ तो शक्ति होनी ही चाहिए, जब तुच्छ नाम में है तो भगवत नाम, भगवान के नाम में तो हो गए, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए, नाम के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए, नाम लेते से ही भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं सब समक्ष साक्षात्कार होना चाहिए। क्यों नहीं होता है साक्षात्कार, केवल संकोच के कारण, संशय के कारण। मान लो फोन, किसी का फोन आपको आया, आपने फोन उठाया, उसने नाम नहीं बोला लेकिन दो शब्द बोले, आप तुरंत बोलते हैं क्या जैसे ही आवाज आप उस व्यक्ति का सुन लेते, पूरी कुंडली आपको उसकी मालूम पड़ जाती है, ये कौन बोल रहा है, क्या, अरे हाँ कैसे, क्या वो फलाना ढिकाना, सारी लीलाएं उसकी याद आती है। रूप भी याद आता है, लीलाएं भी आती है, गुण भी सब याद आ जाता है। और भगवान का नाम लेते से ऐसा क्यों नहीं होता? भगवान का नाम, भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण बोलते से क्या याद आ जाना चाहिए? रूप गुण लीला सब, ये होता क्यों नहीं है? भौतिक संसार में तो बराबर होता है। मान लो कोई ऐसा बैठा है, तुरंत अपने परिचित व्यक्ति का नाम ले लिया, है कि नहीं? आज कौन नहीं है? हे कृष्ण। तो मान लो आज विजय नाम के प्रभु जी नहीं है, आप सब मान लो जानते हैं विजय प्रभु जी को। उन्होंने बोला कि विजय, क्या हो जाएगा, क्या क्या याद आएगा? सब हिस्ट्री सब जान रहा है। या किसी ने बोला रवि प्रभु, रवि बोला, क्या हो जाएगा? सब यार, रवि प्रभु क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, जब कितना करते, सारी हिस्ट्री याद आ जाएगी, सारी रूप गुण लीला पिक्चर भी सामने आ जाएगा। भगवान का नाम लेने से ऐसा क्यों नहीं होता है? किसी का भी नाम ले लो, हमारे हम जितने भी लोग यहाँ बैठे भक्तगण, किसी का भी नाम ले लो तो हम उनका पूरा एक सेकंड के अंदर माइंड फ्लैशबैक, पूरी मेमोरी स्कैन हो जाती है, कोई वायरस नहीं रहता, एज इट इज सब खड़ा हो जाता है सामने। वो इसलिए भगवान का नाम रूप गुण लीला पूरा नहीं समक्ष प्रकट होता है, क्योंकि संशय है, संकोच है, संशय, कुछ तो संकोच है मन में, वही संकोच है, कुछ तो श्रद्धा कम है, श्रद्धा लेकिन संकोच के साथ जुड़ी हुई है, संकोच ने उसको ग्रहण लगा दिया श्रद्धा, इसलिए सब कुछ नहीं आ रहा। इसलिए भगवान यहां उपदेश में क्या कह रहे हैं, न विकम्पि तुम अर्हसि, संकोच मत करो भाई, संशय मत करो, श्रद्धा पूरी फुल टू पूर्ण रूपेण श्रद्धा भगवान के नाम के ऊपर रखो। देखिए जैसे भौतिक संसार के लोगों का सब याद हो जाता है, वो तो दिव्य नाम है, वो तो क्या क्या सामने आ जाए, क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या क्या सामने आ जाएगा आपके, क्या किसका साक्षात्कार होगा, भगवान के गुण 64 कला भगवान के पास, भगवान का सुंदर रूप, सारे देवी देवता तरसते रहते हैं उनके रूप के दर्शन के लिए, और गुण लीला, क्या क्या लीला करते हैं, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठा लिया, कितनी लीला करते हैं। यदि ये सब आपके सामने समक्ष प्रकट हो गया तो आनंद आएगा ना, आएगा कि नहीं? तो संकोच क्यों करते हो प्रभु जी? हम सब आज एक प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान का नामस्मरण करते वक्त कभी भी किसी भी बात पे संकोच या संशय नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि संकोच मत कर, क्यों संकोच कर रहे हैं? वो अर्जुन के माध्यम से हमको भी बता रहे हैं कि संकोच मत कीजिए। हरे कृष्ण, अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।